जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
हरे कृष्ण चैतन्य चरितामृत। आज से हम प्रयास करेंगे चैतन्य चरितामृत के कुछ जो अध्याय हैं उनका सिक्वेंसली रीडिंग करेंगे और कुछ चीजें सीखने का और समझने का प्रयास करेंगे। चैतन्य चरितामृत जैसे आप सब परिचित हैं, जय कृष्ण सही गौर सही जगन्नाथ, श्री चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ देव और जो परम भगवान कृष्ण है उनमें कोई अंतर नहीं है, बल्कि ये तीनों विग्रह एक होने के बावजूद भी अलग अलग रसों का आस्वादन करने के लिए इस जगत में अवतरित होते हैं। और विशेष रूप से ये तीनों जो अलग अलग रूप है विग्रह हैं भगवान के प्रकट होते हैं अपने अलग अलग भक्तों को एक विशेष आनंद प्रदान कराने के लिए। तो कृष्ण का एक विशेष बिजनेस है, उनका एक विशेष कार्य है, और वो कार्य क्या है, अपने कार्यकलापों के द्वारा भक्तों को आनंद प्रदान करना। तो भगवान 5000 साल पूर्व कृष्ण के रूप में आते हैं और वो बहुत बोल्ड हैं। कृष्ण बहुत डिमांडिंग पर्सनालिटी है, वो हमेशा अपने आप को स्थापित करते हैं, हमेशा डिमांड करते हैं, कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, आप सारे धर्मों का त्याग करो और मेरी ही एकमात्र शरण ग्रहण करो। तो ये सब चीजें हम सुनते हैं कि कृष्ण हमेशा डिमांड करते हैं और जीव को चाहते हैं कि उनके शरणागत हो जाए, लेकिन वही कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं लेकिन वो डिमांड नहीं करते। कृष्ण जैसे कहते हैं ना, रिस्पेक्ट डिमांडिंग नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कमांडिंग। तो वैसे ही है, चैतन्य महाप्रभु के प्रति जो रिस्पेक्ट है वो महाप्रभु कमांड करते हैं रिस्पेक्ट को, और कृष्ण क्या है, डिमांडिंग पर्सनालिटी है, वो चाहते हैं मुझे रिस्पेक्ट दो। तो लेकिन कृष्ण ने देखा, अरे ऐसा आचरण से मैं जीवों को आकृष्ट नहीं कर सकता। तो कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत की शुरुआत में बहुत फिलोसॉफिकल डिस्क्रिप्शन देते हैं। सबसे पहले व्यक्ति ये नहीं जानेगा फिलोसॉफिकली सिद्धांत के अनुसार कि जो चैतन्य महाप्रभु है वो साक्षात कृष्ण कैसे हैं, या नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम कैसे हैं, या अद्वैत आचार्य साक्षात महाविष्णु कैसे हैं, और जो गदाधर पंडित श्रीमती राधिका हैं और श्रीवास ठाकुर साक्षात नारद है और उनके जो अन्य भक्त वृंद है। तो ये पंच तत्व के रूप में भगवान आते हैं और पांच विशेष प्रकार के कार्यों को करते हैं, एक ही पर्सनालिटी है लेकिन अलग अलग रूपों में अवतरित होते हैं, इन पांच रूपों में, जिनको पंच तत्व कहा जाता है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु आते हैं और चैतन्य महाप्रभु अपने आप को स्थापित करते नहीं है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को स्थापित करते हैं। कृष्ण का जो नाम है, रूप है, गुण है, लीला है और उसकी जो प्रोसेस है उसको स्थापित करते हैं, ताकि जीव कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाए और उनकी सेवा में तत्पर हो जाए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है वो समझने के लिए, सुनने के लिए, चर्चा करने के लिए एक भक्त को सदैव उत्साहित होना चाहिए। कृष्णदास कविराज ने कहा मध्य लीला के शुरुआत में कि कई सारे भक्त हैं वो केवल दिन बिताते हैं भगवत भक्ति में, लेकिन दिन बिताते हैं और जितनी मात्रा में श्रवण कीर्तन करना चाहिए उतनी मात्रा में अपना श्रवण कीर्तन का ध्यान नहीं देते, वो इतने निष्ठुर हो गए हैं, उतने केयरलेस हो गए हैं, इतने अनकॉन्शियस हो गए, कॉन्शियसली अनकॉन्शियस हो जाना अपने कृष्णा कॉन्शियस के प्रति, है ना, जानबूझ के। तो ये मूढ़ता है, मूर्खता है। तो ऐसे कृष्णदास कविराज कहते हैं, ऐसे भक्त होंगे जो हृष्ट पुष्ट नहीं होंगे अपने आध्यात्मिक जीवन में, यदि वो अपने श्रवण कीर्तन का ध्यान नहीं रखेंगे। इसलिए महाप्रभु या रूप गोस्वामी को महाप्रभु ने जब शिक्षा दी तो महाप्रभु ने कहा, श्रवण कीर्तन जले करय सेचन। गुरु के द्वारा भक्ति लता बीज हमें मिला है। अभी हमें प्रश्न होता है कि एग्जैक्टली भक्ति लता बीज होता क्या है, कोई सीड का साइज क्या होता है। हमारा भौतिक बुद्धि है ना, हम सब सीड का बोले, बीज का बोले तो हमें बीज जो खेतों में डालते हुए याद आते हैं। तो बीज का मतलब है गुरु दीक्षा के रूप में श्रद्धा रूपी बीज देते हैं, वो है दीक्षा। श्रद्धा रूपी जो बीज शिष्य को मिलता है तो शिष्य का कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, श्रवण कीर्तन जले करय सेचन। उसको इतना केयरफुल होना चाहिए कि इस बीज को बढ़ाने में लगना चाहिए उसको। अभी उसको कुछ करने के लिए मिला है इस संसार में, व्यक्ति के पास करने के लिए कुछ है नहीं, इसके पास ये भक्ति लता बीज मिला है। इस बीज को सिंचन करना, उसका टेक केयर करना और उसको लता के रूप में बढ़ोतरी कराना, ये शिष्य का एकमेव कार्य है। इसलिए कृष्णदास कविराज ने कहा, यदि हम उचित मात्रा में योग्य रूप से श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो हम निर्बल हो जाएंगे। बाहरी रूप से हमें बहुत बल दिखाई दे रहा है, बाहरी रूप से बल मतलब भक्त बहुत एक्टिव दिख रहा है, एक प्रकार से शो बोतल होता है ना, या फिर कुछ मोटे मोटे लोग होते हैं, हाथ लगाओ तो उंगली अंदर चली जाती है, लेकिन उनको दौड़ने के लिए बोलो, फिजिकली काम करने के लिए बोलो, उनसे नहीं होगा। तो वैसे ही बाहरी रूप से हमने भक्त का वेशभूषा तो धारण की, बहुत सुंदर सा तिलक लगाया, अच्छे खासे पेंटेड वस्त्र पहन लिए हैं, लगते हैं बाहर से भक्ति बलशाली भक्त हैं, क्या स्मार्ट डिवोटी हैं, लेकिन अंदर से क्या हो गया है, स्पिरिचुअली खत्म हो गया है, उसके पास बल नहीं है। तो बल आएगा कैसे उसके जीवन में, भक्तों का उचित मात्रा उचित रूप से संग नहीं करेगा, श्रवण कीर्तन नहीं करेगा तो वो निर्बल ही बना रहेगा हमेशा ही। तो इसलिए हम सब भक्तिमय जीवन में आते हैं तो हमें अपनी पहले तो ये चैरिटी बिगिंस होम, यदि मैं अपना स्पिरिचुअली ध्यान रखने की देखने के लिए कॉन्शियस हूं तो कृष्ण हमारा ध्यान रखने के लिए किसी साधु को या किसी गुरु को या किसी वैष्णव को हमारे पास भेजते हैं और तब हम उनका लाभ उठाते नहीं, लाभ उठाना चाहिए हमें। तो ऐसा भगवान ये योजना बनाते हैं, ये उनका कार्यकलाप हमें प्रदान करते हैं। तो एक भक्त को हमेशा आध्यात्मिक रूप से बलशाली होना चाहिए और महाप्रभु ने यह सिखाया। चैतन्य महाप्रभु का कार्यकलाप कोई ड्रामा नहीं है, या चैतन्य महाप्रभु का कार्यकलाप या जो भक्ति महाप्रभु ने दी है ऐसे नहीं कि महाप्रभु केवल बोलते रह गए, उन्होंने कुछ किया नहीं, या फिर उन्होंने केवल नाचा गाया कुछ किया नहीं। नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने नाच गान के अलावा भी क्या किया है, बड़े बड़े विद्वानों को भी परास्त किया है, शास्त्रों के सिद्धांतों को स्थापित किया है और विशेष रूप से रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को उन्होंने बल दिया कि जो भी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं उसके आधार क्या होना चाहिए, शास्त्रों का सिद्धांत। उस कार्य का आधार यदि शास्त्रों का सिद्धांत नहीं है तो सारी भावुकता है, मनगढ़ंत कार्यकलाप है, उससे शुद्धि नहीं होगी। हाँ, तो इसलिए महाप्रभु ने क्या किया कि जितने भी ये भगवत भक्ति युक्त कार्यकलाप है उनको शास्त्रों का अनुमोदन दो, शास्त्रों के द्वारा उन कार्यों को स्थापित करो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं, मैं चाहता हूं चैतन्य महाप्रभु बहुत फेमस हो जाए, जैसे आजकल के साई बाबा हैं, और प्रभुपाद कहते हैं हगिंग ये है, हगिंग मदर एक आनंदमय है ना, वो आपको हग करेगी और आप कृष्ण भक्ति से, कृष्ण नहीं प्रेम से अप्लावित हो जाओगे। वो माता है, एक गुरु माता है ना, हगिंग मदर प्रभुपाद कहते, वो आलिंगन करेगी, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, सबको इंजेक्ट कर देगी भाव, कृष्ण भाव। तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा आलिंगन करने मात्र से यदि किसी के हृदय में भक्ति संचारित हो जाती या भगवत प्रेम, वो महाप्रभु करे तो अलग है, चैतन्य महाप्रभु ने कितने कितने अलग जैसे वसुदेव विप्र का उन्होंने आलिंगन किया, उसको कुष्ठ रोग हो गया था। हाँ, तो वसुदेव विप्र का कुष्ठ रोग तो सुंदर हो गए, और वहां कहते भक्ति तुष्टम, भक्ति उनको प्रदान की, भक्ति के द्वारा उनको संतुष्ट किया। तो प्रभुपाद ने कहा कि महाप्रभु इतने फेमस हो जाने चाहिए, ये जो सो कॉल्ड बाबाज वगैरह हो गए हैं, उतने महाप्रभु फेमस नहीं है एक प्रकार से देखा जाए, नहीं जगत में कहा है, इवन इंडिया में। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, प्रभुपाद ने कहा मैं चाहता हूं कि चैतन्य महाप्रभु की जो महिमा है वो फैले। हाँ, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है वो वास्तव में अमृतमय है। श्री चैतन्य, श्री कौन है, श्रीमती राधिका है, और चैतन्य साक्षात कृष्ण है। राधिका का जो चैतन्य है, राधिका की जो चेतना है, चैतन्य का मतलब है कॉन्शियसनेस, चेतना। श्री चैतन्य चरित अमृत, राधिका की चेतना में जिन्होंने अमृतमय कार्यकलाप किए उनका जो संग्रह है, कंपाइलेशन है, वो कौन है, चैतन्य चरित अमृत। तो ये अमेजिंग बुक है। हाँ, तो महाप्रभु के जो छोटे छोटे कार्यकलाप है उनसे सीखना चाहिए, उनसे उन पर मेडिटेट करना चाहिए, और अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए तत्पर होना चाहिए। इसलिए एक सॉन्ग में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हाँ, कृष्ण दास कवि राज, हाँ, परम भकत माझ जे रतिल चैतन्य चरित। कहते कृष्ण दास कवि राज ऐसे वैष्णव है, हाँ, जिन्होंने चैतन्य चरित अमृत की रचना की। हाँ, वो कहते हैं, जय सुनिले गलाय शिला ताहे ना डूबिले मोर चित्त। कहते उसको सुनने मात्र से जो पत्थर आदि वो पिघल गए, लेकिन मैं कितना निष्ठुर हूं कि मेरा हृदय अभी भी पत्थर से भी बढ़कर है, वो क्यों नहीं पिघल रहा है। ये भावना नरोत्तम दास ठाकुर की है, और उस भावना में वो रोने लगते हैं नरोत्तम दास ठाकुर। तो वास्तव में देखा जाए कब वो दिन आएगा कि भगवान के बारे में हम श्रवण करके वास्तव में हमारा ये जो हृदय है, जैसे लोचन दास ठाकुर या वासु घोष कहते हैं कि ये हृदय ये कैसे बनाया मेरा, मेरे हृदय में भगवान ने हृदय के जगह पत्थर रख दिया है, और इसी कारण से वो पिघल नहीं रहा है। हाँ, तो इस प्रकार की भावना महान भक्तों में है, और वास्तव में उनके लिए तो ये भावना अनुचित है। उनका हृदय तो सदैव कृष्ण का नाम लेने मात्र से पिघल जाता है, क्योंकि जब महान शुद्ध भक्त जब कृष्ण कहता है तो कृष्ण के साथ क्या समाया हुआ है, उनका नाम तो है ही, उनके रूप, उनके गुण और उनके लीला कंडेंस, वो कृष्ण नाम पूरा है एक्चुअली, जिस नाम में क्या भरा है, रूप, गुण और लीला। और हमें अभी कृष्ण कृष्ण का नाम है, इसी यही हमें अनुभव नहीं है कि कृष्ण और कृष्ण के नाम में अंतर नहीं है। तो इस प्रकार की भावना इन महाप्रभु के भक्तों में है। तो ऐसे चैतन्य चरितामृत का हम प्रयास करेंगे, जब भी मैं फ्री रहूंगा तो हम उस पर चर्चा करेंगे। तो मैंने चूज किया है मध्य लीला से चैप्टर 10, महाप्रभु का जगन्नाथपुरी में लौटाना। तो चैतन्य महाप्रभु ने तीन जगहों में अपना जो लीला है की है, प्रकट की है। एक तो अधिकतर समय 24 साल की आयु तक उन्होंने नवद्वीप में अपनी लीलाओं का संपादन किया, और फिर चैतन्य महाप्रभु 24 साल की आयु के बाद कहा गए जगन्नाथपुरी। हाँ, जय माघ मासे प्रभु करेला संन्यास। हाँ, जो माघ महीना था उसके बाद महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया था, और जगन्नाथपुरी में रहे चैतन्य महाप्रभु, और जगन्नाथपुरी से फिर वो दक्षिण भारत गए। 2 साल लगभग दक्षिण भारत की उन्होंने यात्रा की, और दक्षिण भारत की अपनी यात्रा का भ्रमण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु वापस जगन्नाथपुरी आए। तो हम अभी चैतन्य महाप्रभु के संग में है, कहां, जगन्नाथपुरी में। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी लौट आए तो उसकी बात का जो लीलाएं हैं उनको हम सुनेंगे कि किस प्रकार से महाप्रभु पहुंचे जगन्नाथपुरी, और फिर वहां क्या क्या उनके कार्यकलाप घटित हुए। हाँ, तो कृष्णदास कविराज के ये जो वर्णन है, जो वर्णन है श्लोकों में, उसको मैं पढ़ूंगा प्यारों के साथ, और जहां संभव हो वहां चर्चा करूंगा। तो कृष्णदास कविराज की एक खासियत है कि पूरे चैप्टर का समरी अध्याय के पहला एक जो श्लोक है उसमें वो करते हैं। हाँ, ये यूनिकनेस है वैष्णव आचार्यों की, समराइज करना पूरे चैप्टर को। तो वो कहते हैं, तम वंदे गौर जलदम स्वश्यो दर्शनामृते विच्छेदावग्रह मलान भक्त शशान्य जीवयत। मैं उन चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ जो वर्षा की कमी से कष्ट पा रहे हैं, भक्त रूपी धान्य के खेतों में जल बरसाने वाले बादल की तरह है। तो महाप्रभु की तुलना बादल से की गई है और भक्तों की तुलना उस धान्य या खेतों से की गई है जो वास्तव में जल के अभाव में कष्ट पा रहे हैं और वो कह सूर्य के ताप से तप रहे हैं। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए तो 2 साल भक्तों को महाप्रभु के विरह में जो विरह अग्नि है, विग्रह विरह अग्नि, अग्नि थोड़ी ठंडक देती है, अग्नि तो ताप देती है। तो महाप्रभु के विरह में भगवान चैतन्य के जो भक्त जगन्नाथपुरी में वास्तव में वो तप गए थे, कब महाप्रभु आएंगे। और महाप्रभु जो बादल के समान है जो बल जल बरसाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का वियोग सूखे की तरह है, जैसे सूखा पड़ जाता है ना किसी स्थान में, अकाल पड़ जाता है, वैसे ही महाप्रभु का वियोग भक्तों के लिए है। किंतु जब महाप्रभु लौटते हैं तो उनकी उपस्थिति उस अमृत वर्षा की तरह है जो सूखते हुए अनाज पर बरस कर उसे नष्ट होने से बचा लेती है। हाँ, तो कितना महत्वपूर्ण है। हमारी स्थिति भी वैसी है, तापी तो जीवन, नरोत्तम दास ठाकुर कहते मेरा जीवन तप रहा है। और वास्तव में जब तक चैतन्य महाप्रभु की कृपा या महाप्रभु हमारे जीवन में नहीं है तब तक हम उस अनाज के समान है जो बेचारा सूखते जा रहा है। और वैसे ही देखा जाए भगवान का जितना नाम रूप गुण लीला आदि हमसे दूर होते हैं या उनके संपर्क में हम कम मात्रा में रहते हैं तो धीरे धीरे हमारा आध्यात्मिक जीवन सूखने लगता है। मैं भी उस भक्त के पास पूरी भौतिक सुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन उसके जीवन में यदि ये श्रवण कीर्तन वैष्णव सेवा आदि नहीं है उसके पास तो वो व्यक्ति सूखते जाएगा अपने भगवत भक्ति में। तो महाप्रभु नहीं थे जिसके कारण जगन्नाथपुरी के भक्त एक प्रकार से सूखते जा रहे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु वापस आ गए दक्षिण भारत की यात्रा से और ऐसे सूखने वाले सारे भक्तों को उन्होंने बचाया अपने अमृत वर्षा के द्वारा, मतलब अपने प्रेजेंस के द्वारा। तो वो कहते हैं कृष्णदास कविराज, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। कितना आनंद है। अभी हमारे अंदर ईर्ष्या होती है ना, द्वेष होता है, तो हम किसी की जय नहीं बोलते, क्यों हमारे गले में पूरा कुछ अटक जाता है। हाँ, जैसे बिल्ली कभी कुछ खाती है ना तो उसके गले में कुछ कांटे अटक जाते, मछली खाती है या कुछ खाती नहीं चिल्लाती रहती करती रहती है, या फिर कुत्ता है हाँ कुछ हड्डी अटक जाती है। तो हमारी स्थिति वैसी ही है, हमारे जीवा से जय निकलती नहीं है। जब जय ध्वनि होती है ना तो हमें नींद आती है, या हम बाहर निकल जाते हैं टेम्पल हॉल से, या फिर हम सर नीचे नहीं करेंगे। क्यों नहीं कह पाता, क्योंकि ईर्ष्या इतनी भरी पड़ी है, द्वेष इतना है, किसके प्रति, भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति। तो जय निकलेगी नहीं हमारे हृदय से जब ये भावना हमारे अंदर बनी रहेगी। तो इसलिए वास्तव में पता चलता है, क्योंकि कृष्ण भावना की छोटी से छोटी एक्टिविटीज से आप पता कर सकते हो कि ये भक्त की चेतना कैसी है। तो उससे पता चलता है, जैसे राइस बहुत है तो पक गया कि नहीं तो एक छोटे से दाने को पकड़कर आप चेक कर सकते हो। तो उसी प्रकार से है। तो कृष्ण भावना का हरेक कार्यकलाप उतना ही महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि भक्तों के सामने प्रवचन देना ज्यादा महत्वपूर्ण है हाँ, लेकिन बाकी कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, या फिर बड़ी बड़ी सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण है, छोटा छोटा आचरण इतना मायने नहीं रखता। नहीं, हम चाहे अकेले हो या हमें कोई देख नहीं रहा है, या हम भक्तों के समाज के बीच में हो, तो हम किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से हमारा आचरण रखते हैं, किस प्रकार से बोलते हैं, चलते हैं, भक्तों से व्यवहार करते हैं, उससे हमारी चेतना झलकती है अपने हमारे कार्यकलापों के द्वारा। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्णदास कविराज इतने महान ग्रंथ की रचना करते हैं, उनका बल यही है, वैष्णवों की कृपा, ये उनका बल है। और वास्तव में कोई वैष्णव जब एम्पावर्ड कर देता है, अपनी कृपा का वर्षाव कर देता है, तो अयोग्य से अयोग्य व्यक्ति भी बहुत बड़े बड़े कार्य करने लगता है। तो हर जब भी कृष्णदास कविराज को मौका मिलता है तो तो वो इतना गुणगान करते हैं, किनका गुणगान करते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य गौरांग के भक्तों की जय हो। हाँ, इतना आनंद से उनका हृदय नाचने लगता है भक्तों की जय जय कर करने में। हाँ, तो इसलिए ये आवश्यक है, इससे हमें पता चलता है कि मेरी चेतना की कितनी बुरी दशा है। हाँ, कि मेरे मुख से जय ध्वनि नहीं निकलती। हाँ, मैं बोल सकता हूँ प्रेम ध्वनि में बोल सकता हूँ जय ओम विष्णु भाग परमहंस परिव्राजकाचार्य, लेकिन जब मेरी बारी आती कि अरे जय बोलो, तब गले में अटक जाती कुछ। हाँ, माया देवी भगवान के भक्तों का आचार्यों का कृष्ण का जयकार नहीं करवाने देती। तो ये हमारी कमियां है, ये वीकनेस है। तो ये छोटे छोटे कार्यों को हम स्किप करते हैं ना, तो माया देवी एंटर करना शुरू करती है। हाँ, क्योंकि किसी चीज को जैसे चूहा है, चूहा थोड़ी बहुत बड़ा बिल बनाता है अचानक। हाँ, छोटा 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 कुरते कुरते जाएगा, पूरा सब खत्म कर देगा, आपकी बुक की लाइब्रेरी खा डालेगा या फिर ना आपके कपड़े खत्म कर देगा। तो वैसे ही है, माया हल्की सी एंटर करती है। क्या ठीक है, अभी जय ध्वनि मत बोलो प्रभु जी, आप ना तुम्हारे गले में बहुत ये हो रहा है, बीमार हो और फिर ठंड है, कई सारे फालतू कारण होते हैं। और फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि बाकी बहुत सारी चीजें हमारे आध्यात्मिक जीवन में कम होने लगती है, खत्म होने लगती है। तो इसलिए ये सीक्रेट है जय जय ध्वनि। और वास्तव में हमारा जीवन बना ही है कृष्ण की जय, हम जय नहीं बोल रहे थे ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, इसलिए भेजा है, हम अपनी जय चाहते थे। प्रॉब्लम यह है वहां कृष्ण की जय क्यों बोली जा रही, मेरी भी तो जय होनी चाहिए। तो इसलिए कहा बेटा जाओ भौतिक जगत में, देखो कितने जय बोलते है तुमसे, तुम्हारे आपके कितने जय बोलते है लोग। फिर हम ट्राई करते हैं, अपना संसार खोलते हैं, पत्नी है, बच्चे है, रिलेटिव है, सो कॉल्ड शिष्य है, उनसे बुलवाते जय बोलो बेटा सबसे। यही तो अल्टीमेटली क्या है, हम सब अपनी प्रशंसा चाहते हैं, हम सब अपनी वाहवा चाहते हैं, हम सब अपनी स्तुति चाहते हैं। और ये स्तुति या वाहवा क्या है, जय ही तो है जिससे हमें बहुत गर्व महसूस होता है। तो इसलिए सीक्रेट है कृष्णदास कविराज का, वो हमेशा महाप्रभु कोई भी अध्याय शुरू करते हैं उसके शुरुआत में भूलते नहीं है। इसलिए आप ये जय बोलना क्यों आवश्यक है, जिसके द्वारा हमें अपने इंद्रियों पर विजय हम प्राप्त कर पाते हैं, केवल वैष्णवों की जय बोलने से। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं, गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। इतना पावरफुल है इन तीनों का स्मरण, और इनका यदि जय बोलू तो कितना पावरफुल हो सकता है। गुरु का स्मरण, वैष्णवों का स्मरण और कृष्ण का स्मरण, जिनका स्मरण करने मात्र से हजारों जो भक्ति में आने वाली बाधाएं हैं, व्याधियां हैं, वो दूर हो जाती हैं। प्रभुपाद के पास शिष्य गया, वो बहुत प्रॉब्लम में रहता था। प्रभुपाद ने कहा मुझे क्यों नहीं बोला प्रॉब्लम, मेरी एक किक से सारे स्टम्बलिंग ब्लॉक खत्म हो जाएंगे तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन से। उसका मतलब है क्यों नहीं हम आध्यात्मिक गुरु की वैष्णव की शरण ग्रहण करते हैं, और शरण ग्रहण करने का ये भी एक अर्थ है। हाँ, तो इसलिए वो गुणगान करते हैं। और वास्तव में जितना हमारी जीवा कृष्ण का और उनके भक्तों का गुणगान करेगी ना, उतनी ये जीवा मैड हो जाएगी उनके लिए और अधिक, और उसके लिए जीवा बनाई गई है। हाँ, ये तो उस नाव के, नाव में छोटा सा एक जीवा होती है, नाव जब चलती है ना छोटा सा एक लोहे का पत्ता होता है, जीवा कहते हैं, टंग कहते हैं उसको, तो वो पूरा दिशा बदल देती है पूरे नाव की, छोटी सी है। तो वैसे ही है ये नाव, छोटी सी जीवा कुछ इंच की है, यह हमें पूरा हमारे आध्यात्मिक जीवन की दिशा बदल देगी। हाँ, और आध्यात्मिक जीवन की या तो बैक टू गॉड हेड ले जाएगी, या तो बैक टू नरक लोक, या मरण लोक में आ जाएगी। पूर्वे जबे महाप्रभु दक्षिणे चलीला दक्षिणे प्रताप रुद्र राजा तबे बोला इला सार्वभौमे। तब ये महत्वपूर्ण है समझने के लिए, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए तो महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, तो इसकी जो अनुभूति है वो सार्वम भट्टाचार्य को हुई थी। सार्वम भट्टाचार्य ये नवद्वीप के ही निवासी हैं। हाँ, तो ऐसे सार्वम भट्टाचार्य जब जगन्नाथपुरी गए थे तो राजा का बहुत फेथ था। सार्वम भट्टाचार्य के एक प्रकार से गुरु है। हाँ, सार्वम भट्टाचार्य राजा के गुरु हैं। तब राजा को पता चला कि ये चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आए और वो महावदन्याय है या साक्षात भगवान है। और तब उनको पता चला कि अरे महाप्रभु पुरी को छोड़कर दक्षिण भारत चले गए हैं। तो उन्होंने किसको बुलाया, सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाया, क्योंकि महाप्रभु जब पहली बार जगन्नाथपुरी में किसके घर में रुके होंगे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनके लिए सारी सुविधाएं प्रदान की थी। सार्वभौम भट्टाचार्य बल्कि मायावादी थे, लेकिन उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को शेल्टर दिया एक प्रकार से, और महाप्रभु ने उनका उद्धार किया। मायावाद से वो क्या बने, महाकृष्ण भक्त बने। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते कि हे गौरांग देव, मैं तो एक कौवे के भांति था, काव काव करता रहता था, मायावादी भाषा बोलते रहता था, लेकिन आपने मुझे अभी गरुड़ बना दिया है। भक्तों के समाज में कितना बड़ा कार्य है, आपने एक कौवे को गरुड़ का स्थान दिया है। तो ये भावना सार्वभौम भट्टाचार्य प्रकट करते हैं। तो राजा ने सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाया और पूछा, वसिते आसन दिल करी नमस्कारे महाप्रभुर वार्ता तबे पूछी लता हरे। तो जब सार्वभौम भट्टाचार्य राजा से मिले तो राजा ने उनको आसन और सम्मान आदि प्रदान किया। तो हमेशा जो अपने गुरु वर्ग है, अपने सीनियर्स है, तो उनके साथ कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए वो राजा प्रताप रुद्र सिखा रहे हैं। राजा को क्या आवश्यकता है पर्सनली सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे, कितने भट्टाचार्य उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, कितने उनके आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लेकिन क्या करते सार्वभौम भट्टाचार्य को, राजा स्वयं आसन देते हैं। ये नहीं कहा कि अरे सर्वेंट उसको जरा आसन दे दो, नहीं, ये अपॉर्चुनिटी है। राजा प्रताप रुद्र हमेशा इस भावना में सोच रहे हैं कि मुझे ये जो वैष्णव है सार्वभौम भट्टाचार्य, ये उनके गुरु हैं, उनकी सेवा करने का मौका मिला है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये चीज मेरे जीवन में मंगल लाने वाली है। ये आसन उनको प्रदान करते हैं और उनको प्रणाम आदि करते हैं और बहुत ही दीनहीन विनम्रता की भावना से उनसे जिज्ञासा करते, पूछते हैं किसके बारे में, महाप्रभु के बारे में। इसलिए तो कृष्ण ने कहा प्रश्न पूछना है उसके लिए भी योग्यता चाहिए, क्या, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अभी हम प्रश्न पूछते जाएंगे लेकिन बाकी दो चीजें नहीं करेंगे, तो दिव्य वो ज्ञान हमारे हृदय को टच नहीं करेगा ना, हम उसके द्वारा शुद्ध होंगे। हाँ, तो इसलिए बहुत आवश्यक है पूर्ण कृष्ण भावना के ज्ञान की अनुभूति के लिए। ये जो प्रोसेस दी है, तीन स्टेप की ये प्रोसेस, इसको पालन करना बहुत आवश्यक है। तद विधि प्रणिपात, सरेंडर होना, सम्मान आदि प्रणाम आदि करना, परिप्रश्न विनम्रता के साथ, नीड है मुझे जानने की आवश्यकता है, मैं व्याकुल हूं, सही में मैं समझना चाहता हूं, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहता हूं, इस भावना से जिज्ञासा करनी। हम तो नाम के लिए जिज्ञासा करते कि हाँ मैं भी तो जिज्ञासु हूं, दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए, है ना, आई एम ऑल्सो बड़ा क्वेश्चन बैंक है, मैं क्या हूं क्वेश्चन बैंक हूं, नहीं। लेकिन ये प्रोसेस हम नहीं पालन करेंगे तो शुद्ध नहीं होंगे, हृदय को टच नहीं करेगा वो जो आध्यात्मिक नॉलेज है, और उसको धारण भी नहीं कर पाएंगे हम। इसलिए तद विधि प्रणिपातेन, हे अर्जुन, विधि क्या है, प्रकृष्ट रूपेन निपात, निपात हो जाना, दंडवत करना, सरेंडर हो जाना। हाँ, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और परिप्रश्न उचित रूप से प्रश्न करना, जिज्ञासा करना। हाँ, जैसे सारे जिज्ञासा के आइडियल उदाहरण है कौन, परीक्षित महाराज। हाँ, परिप्रश्नेन और सेवया, और क्या करनी, सेवया। हाँ, सेवया नहीं खाना है ना, सेवया की खीर खाते हमें तो वो पता है सेविया, लेकिन यहाँ सेवया कहा गया है कि अरे बाबा सेवा करो, हाँ, उनकी जिनसे आप जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो। तो इस प्रकार से राजा जो प्रताप रुद्र है वो ये इस प्रोसेस को फॉलो करके भट्टाचार्य का बड़ा सम्मान आदि करके आसन देकर उनसे जिज्ञासा करते हैं। क्या जिज्ञासा करते हैं, सुनिलाय तोमार घरे एक महाशय, गौड़ा है ते अयला ते हो महाकृपा माय। अरे अरे, हे हे सार्वभौम भट्टाचार्य, मैंने सुना है कि गौड़ा देश है एक महाशय, कितने महाशय, एक। हाँ, महाप्रभु एक है और प्रभु दो है, कौन है दो प्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु, और महाप्रभु कौन है, एक। द्वि प्रभु करे महाप्रभुर सेवन, कृष्णदास कविराज कहते हैं दो प्रभु एक प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं और वो महाप्रभु है। तो उसी प्रकार से महाशय, महाशय का अर्थ है कि महाशय उपाधि जीव गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर को दी थी, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर का जो भजन है, भक्ति है और उनके गीत आदि है ना, उनकी तुलना नहीं की जा सकती। उनका जो राधा भजन है वो अतुलनीय है नरोत्तम दास ठाकुर का। तो महाशय का मतलब है राधा रजे चरणाश्रय करे से ही महाशय, श्रीमती राधिका के चरणों का जो आश्रय जिन्होंने लिया है फिक्स, वो वास्तव में महाशय है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को कहा जाता है वार्ष भानवी दैत दास। वार्ष भानवी कौन है? श्रीमती राधिका है। दैत का मतलब है अति प्रिय और ऐसे सर्वंट। तो वास्तव में जो गुरु है वो गुरु को रियलाइज करना या गुरु के स्थिति को जानना, उसका मतलब है बाहरी रूप से तो हम गुरु को देखते कि अरे ये तो बड़े वैरागी है, ये तो खाते कम है, पीते कम है, सोते कम है। हाँ, ये तो एक्सटर्नल आप देख रहे हो, आंतरिक अनुभूति क्या है कि वास्तव में मेरे आध्यात्मिक गुरु श्रीमती राधिका के प्रेष्ट सखी या बहुत प्रिय भक्त है। इस भावना का उदय होना कि भगवान के बहुत प्रिय है, ये भावना, ये रियलाइजेशन कब आएगा? इसलिए रोज चांट करते फिर भी भूल जाते हैं। हजारों दिनों से हम मंत्र चांट करते आ रहे हैं तोते की तरह, नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने कृष्ण पृष्ठाय। पता ही नहीं कृष्ण पृष्ठाय क्या है। हाँ, पृष्ठाय का मतलब वही है, प्रिय है। तो ये जानना, जैसे जैसे कृष्ण भावना के दिन गुजरते हैं वैसे वैसे शिष्य के हृदय में इस भावना का विकास होता है कि वास्तव में जो गुरु गण है, वैष्णव गण है, वो कृष्ण के श्रीमती राधिका के बहुत प्रिय हैं। सुनिलाय तोमार घरे एक महाशय, मैंने सुना है कि आपके घर में एक महाशय का आगमन हुआ है। कहां से आया है महाशय? गौड़ा है ते आयला। हाँ, गौड़ा है ते आयला ते हो महाकृपामय। तो ये गौड़ देश है। हाँ, पंच गौड़ कहा जाता है, पांच गौड़ देश है, मैं नाम भूल गया, उसमें से बिहार का कुछ भाग, उड़ीसा का कुछ भाग, बंगाल, ऐसे पांच प्लेसेस आते हैं जिनको गौड़ कहा जाता है। तो ये जो गौड़ है, गौड़ देश, जो बंगाल को कहा जाता है विशेष रूप से, और वहां चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने कहा बंगाल से आया है वो महाशय, और उस महाशय का ये गुण क्या है? महाकृपामय। हाँ, जैसे मैं आज सुबह क्लास में कह रहा था कि हमारे मूवमेंट में सब महा है, महाप्रभु, महाप्रसाद, महामंत्र, महाजन, हाँ, महाआरती, और क्या है, ये महाकृपामय, महाभागवत, महाभारत, सब महा है। तो इस महा महा में इसलिए वो कहते हैं महाबुक्स, बिग बुक्स, तो महा बिग बुक्स। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं महाकृपामय। और वास्तव में बाद में रूप गोस्वामी ने यही चीज बोली है, नमो महा वदान्य। तो यह महाकृपामय है, वो जो आए हैं यहाँ आपके घर आए थे वो कैसे महाकृपामय। और वास्तव में देखा जाए चैतन्य महाप्रभु ने जिस कृपा का विस्तार किया है ना, आज तक किसी ने नहीं किया, कोई अवतार नहीं कर पाया, इवन कोई व्यक्ति भी नहीं। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, विचार करेले चित्ते पावे चमत्कार। अरे अरे, महाप्रभु की दया का थोड़ा सोचो ना। हम माया के बारे में सोचते रहते हैं और फिर कहते हैं अरे क्यों मेरे भक्ति में जीवन प्राण में नहीं है। कृष्ण के बारे में सोचो ना, जितना हम इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचते हैं, फालतू विषयों के बारे में सोचते हैं, उतना यदि हम महाप्रभु के बीच कार्यकलापों के बारे में सोचेंगे, कम से कम रोज ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, हाँ, कृष्ण के बारे में सोचते रहे, भगवान की ये लीलाएं हैं, इस प्रकार से भगवान कार्यकलाप करते हैं अपने भक्तों के संग में, महाप्रभु आदि। तो महाप्रभु इतने कृपालु हैं, जैसे मैं सुबह कह भी रहा था कि कृष्ण का क्या है, कृष्ण कहते मेरे पास आओ, महाप्रभु कहते तुम जाओ ना, वहीं रहो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। हाँ, जैसे बादल है, बादल आप, वो बादल नहीं कहते कि तुम मेरे पास आओ तभी मैं वर्षा करूंगा, नहीं, बादल कहते आप जिस गांव में हो वहां ठीक है रहो, मैं आ रहा हूं, आके वर्षा करूंगा। इस प्रकार से महाप्रभु है, महाप्रभु चाहे आप, मतलब प्रभुपाद ने कहा ना कि मंदिर आपके पास समय में नहीं है मंदिर आने के लिए, मंदिर आपके पास आएगा। तो महाप्रभु आपके पास आ रहे हैं और महाप्रभु घर घर में जा रहे हैं। स्वयं देखो दक्षिण भारत गए, कौन दक्षिण भारत का आता बंगाल में पुरी में महाप्रभु का शरण ग्रहण करने के लिए? कोई नहीं। महाप्रभु कहते ठीक है तुम बिजी हो, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। इससे अधिक वदाने कौन हो सकता है? हमारे माता पिता, हमारे बंधु भाई, हमारे मित्र आदि, ये इतने हमारे हमसे प्रेम नहीं रखते हैं जितना चैतन्य महाप्रभु रखते हैं एक्चुअली। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अमा बिना बंधुआर के आछे तुम्हार, मेरे बिना तुम्हारा सबसे नजदीक का फ्रेंड बंधु कौन है? लेकिन हम फिर भी और इधर उधर मुंह मार रहे कि ये मेरा बंधु बनेगा, ये मेरा भाई बनेगा, ये मेरा मित्र बनेगा, ये मेरा फ्रेंड बनेगा, ये मेरा ताचा बनेगा, है ना? आजकल क्या है, सो कॉल्ड रिलेशनशिप हम बनाते जाते हैं। नहीं भाई तो भी मुझे ना मुंह बोला भाई है ये मेरा, मुंह बोली बहन है। अरे काहे की बहन और भाई, ये सब भौतिक संबंध है और ये सारे केवल इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है और कुछ नहीं। प्रभुपाद ने कहा दीज आर सो कॉल्ड रास्कल पीपल। अभी ये बहनों बहन जी बोलना शुरू किए, माता जी बोलो ना, ये बहन जी बोलते रहेंगे और बाद में सारे फालतू काम करेंगे। प्रभुपाद कहते दिस इज मॉडर्न सो कॉल्ड नेस्टी कल्चर। तो इस प्रकार से प्रभुपाद बहुत ये थे। तो महाप्रभु की ये विशेष वदान्यता है कि आप जो मर्जी हो स्थाने स्थिता तनुवांग मनोभी, आप अपने स्थान में स्थित हो जाओ, महाप्रभु आपको कृपा देने के लिए आ रहे हैं। मतलब जैसे कोई भिखारी है, एक भिखारी एक राजा बहुत दान दे रहा था, जो आए वो ले जाए। तो ये सब लोग अपना कुछ ना कुछ पात्र लेके आते थे। एक व्यक्ति गया, अरे मेरे पास कुछ ले लो दान, पात्र नहीं है। राजा ने कहा रुको, मैं पात्र भी देता हूं और दान भी देता हूं, वो महाप्रभु है। कृष्ण कहते पात्र लेके आ जाओ, पात्र कहे सरेंडर। महाप्रभु कहते मैं तुम्हें पात्र भी दूंगा और तुम्हें दान भी दूंगा। ये महाप्रभु की वदान्यता है। ऐसा कौन है वदान्यता, कौन वदान्य अवतार है हाँ इस जगत में? इसलिए चैतन्य महाप्रभु इज नॉट ऑर्डिनरी। महाप्रभु कोई सर्वसामान्य नहीं है, विशेष अवतार है। हाँ इसलिए लोचनदास ठाकुर कहते ना परम करुणा पहु द्विजन निताई गौर चंद्र सभा अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। महाप्रभु तो सारे अवतारों के सार शिरोमणि है, टॉप मोस्ट ज्वेल। केवल आनंद कंद, उनके उनके संपर्क में आने मात्र से केवल क्या है, आनंद कंद है, मधुर आनंद की अनुभूति हो सकती है। तो इसलिए वो कहते हैं महाकृपामय है। उनको पता चला था कि अभी अभी इनका भी उद्धार किया है, मेरे सामने जो हजारों भट्टाचार्य बैठे उनका उद्धार हो चुका है, इसलिए महाकृपामय है। वो आगे कहते हैं तुम्हारे बहु कृपा कैला कहे सर्वजान, कृपा करी कराह मोरे तहार दर्शन। तो राजा प्रताप रुद्र ने सुना था कि सब लोग कह रहे हैं कि उस महाकृपामय गौड़ से आए हुए महाशय ने आपके ऊपर बहुत कृपा की है और मैं क्या चाहता हूं, कृपा करी कराह मोरे तहार दर्शन। यानी कि ऑर्डर दे रहे दर्शन कराओ मेरा। हम कहते हैं मैं आ रहा हूं वीआईपी लाइन में, मेरा मुझे दिखाओ, सीधा दर्शन कराओ, प्रसाद खिलाओ, लाइन में नहीं होना चाहिए। नहीं, क्या करे, कृपा करे, मुझे रियली कृपा चाहिए मेरे जीवन में। और वास्तव में आध्यात्मिक जीवन ये पाथ ऑफ ग्रेस है, इसको कहते हैं कृपा का रास्ता है। आध्यात्मिक जीवन टिका ये कृपा के ऊपर, और हम कृपा का आधार नहीं लेंगे अपने आध्यात्मिक जीवन में, हमारे लिए आध्यात्मिक प्रैक्टिस दिन ब दिन बहुत कठिन होते जाएगी, बहुत टफ हो जाएगी। इसलिए वो कहते आपके ऊपर तो कृपा हो गई महाप्रभु श्री चैतन्य क्या, ऐसे सारा जगत बोल रहा है, सारे पूरी के निवासी बोल रहे हैं कृपा करे कराह मोरे तहार दर्शन। और आप क्या कीजिए, मुझे कृपा करके उनका दर्शन कराइए, देखना चाहते थे, मिलना चाहते थे। और वास्तव में राजा प्रताप रुद्र का ये जेन्युइन है ना, बहुत आंतरिक हृदय से ये इच्छा थी, जिसको वो अपने गुरु सरम भट्टाचार्य के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और वास्तव में हम देखा जाए, हम क्या तैयार है भगवान को देखने के लिए, या हम सही में भगवान के धाम जाना चाहते हैं क्या? आगे यहां ही रहना, हम अपने आप को यदि परखें, रोज चेक करें कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं क्या सही में भगवान के धाम जाना चाहता हूं? मैं मंगल आरती नहीं जाना चाहता, तो भगवान के धाम कहां जाना चाहता हूं? मैं भागवतम क्लास में नहीं जाना चाहता, हमें भक्तों का संग करने के लिए नहीं जाना चाहता, कहां भगवत धाम जाना चाहता हूं वो तो कोसों दूर की बात है, अभी यहां ही नहीं जाने की इच्छा हो रही है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो भी शरीर त्याग कर, ये शरीर से इतना प्रीति है तो काहे का शरीर त्यागेंगे हम। तो वास्तव में हम इतने निठल्ले हैं, हम नहीं जाना चाहते। हमें वो कैलाश की स्टोरी सुनना बहुत अच्छी लगती है नारद की, कि नारद वो कैलाश को ले जा रहे थे, चलो चलो भगवान के धाम, कहते अभी बच्चा हो रहा है ना, रुको अभी स्कूल जाना है, इसकी शादी है। हम वास्तव में कैलाश के बाप है। हम कैलाश है, महाकैलाश। हम तो बेचारे कैलाश का नाम बदनाम कर रहे हैं, हम स्वयं कैलाश बने हुए हैं। वैसे देखा जाए हम रियली नहीं जाना चाहते। हम रियली जाना चाहते ना तो कुछ और ठीक से एक्ट करते, हम अपने आध्यात्मिक जीवन की चिंता होती है हमें और उसके लिए तैयार होते। हाँ, जब गले में आपका फांसी का फंदा लटक रहा है तो आप कैसे चिल्लाओगे, तड़पोगे, नहीं छोड़ो छोड़ो, छूटना चाहते हैं। अभी हमें फांसी का फंदा ये बिल्कुल वो सॉफ्ट लग रहा है, जैसे शॉल है मेरे गले में, बड़ी सॉफ्ट लग रही है ना। तो वैसे ही है, अब ये लगेगी इसकी जगह कुछ और कांटेदार कुछ हो गले में लगा के खींचोगे तो कहते नहीं छोड़ो छोड़ो, मैं मुक्त होना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ, है ना। और वैसे ये मटेरियल वर्ल्ड का जो सिचुएशन है वैसे ही हमें सॉफ्ट कुशन, हम सारे हिरण्यकशिपु हैं, गोल्ड और बेड, ये दो ही चीजें हमें पता है, इसके परे कुछ नहीं चाहते। आर के छु चाय अनन्य भजन हो रहा है। अनन्य भजन क्या हो रहा है? गोल्ड चाहिए, इंद्रिय भोग चाहिए, मतलब ऐश्वर्य चाहिए, और क्या चाहिए? बेड चाहिए, भौतिक इंद्रिय तृप्ति चाहिए। तो इस प्रकार से हम वास्तव में नहीं जाना चाहते भगवान के धाम। जो जाना चाहता है ना उसके लक्षणों से पता चलता है। हमारे अभी पूछ में आग लगी नहीं है, लगेगी ना तब पता चलेगा कि रियली मैं जाना चाहता हूँ, नहीं हो बहुत हो गया। जैसे रूप सनातन की आप पढ़ेंगे मध्य लीला के शुरुआत में, कहते कि नहीं वास्तव में ये इस भौतिक जगत का जो विषय विषानले दीवानिशी हिया जुले जुड़ाई ते ना कहीं नो उपाय। नरोत्तम दास ठाकुर कहते ये तो अनल है, ये आग के समान जला रहा है मुझे, दीवानिशी दिन रात जला रहा है, ना कहीं नो उपाय, कोई उपाय नहीं सूझ रहा है मुझे, इसलिए मैं नहीं रहना चाहता इस जगत में, वो भागना चाहते है। हाँ, तो हमें यहाँ ही अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, माया और भी रजाई डाल रही है, कम्बल डाल रही है, बहुत कुछ है बेटा सो जाओ, और हम बड़े मस्ती में उसके साथ सो रहे हैं। तो ऐसे हम नहीं निकलना चाहते बाहर, एक्चुअली हम नहीं चाहते, कृष्ण को देखना नहीं चाहते, दर्शन नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ इनके लालसा है। किन के अंदर है लालसा? राजा प्रताप रुद्र के अंदर। राजा होने के बावजूद भी, इतना ऐश्वर्य आदि होने के बावजूद भी उनके अंदर भगवत दर्शन कर लिए कि क्या है, एक तीव्र लालसा है। और वास्तव में वो तीव्र लालसा क्यों है? क्योंकि वो सार्वभौम भट्टाचार्य के संग में है। और यही है रूप गोस्वामी ने कहा कि ये जो लवले है कृष्ण प्राप्ति का, वो कृष्ण प्राप्ति के लिए एक चीज आपको खरीदनी पड़ेगी। तो प्रभुपाद कहते हैं क्या है वो चीज? हाँ, तो रूप गोस्वामी ने कहा तत्र लवल्य मूल्य एकलम जन्म कोटि सुकृतिर न लभ्यते। भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ काम नहीं आने वाला, किस भी जगत का कोई भी जो करेंसी है वो उससे आप कृष्ण को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। कौन सा करेंसी है? लवल्य, ग्रीड, भगवान को प्राप्त करने का ग्रीड, लालसा। और ये कहाँ मिलेगा? जब पूछा तो उन्होंने कहा जिस भक्त के अंदर ये ग्रेड है भगवत प्राप्ति की, लालसा है, लवल्य है, उसके अनुगत हो जाओ, उसका संग करो, तो आपके अंदर वो करंसी अपने आप आ जाएगी और आपके अंदर भी वो लवल्य जागृत होने लगेगा। इन्होंने कहा आप मुझे कृतार्थ करो, उनका दर्शन आदि कराकर। भट्ट कहे जय सुनिला सब सत्य है, तार दर्शन तोमार घटन नहाय। अभी सारम भट्टाचार्य जो वास्तव में सत्य बोल रहे हैं, उन्होंने कहा आपने जो सुना है ना मेरे बारे में कि मेरे ऊपर कृपा की, वो सारी चीजें सच है, सत्य है, लेकिन तार दर्शन तुम्हार घटन ना है। घटन का मतलब है घटना या संभव नहीं है, लेकिन आपके लिए उनका जो दर्शन है या आपके दर्शन का प्रबंध करना ये बहुत कठिन है, ये असंभव है। वेरक्त तो फिर कहेंगे क्यों क्यों, जरा बोलो आगे बोलो क्यों असंभव है। तो कहते हैं विरक्त सन्यासी ते हो रहे न निर्जने, स्वप्ने न करे न ते हो राज दर्शने। तो सन्यासी हैं, उनके स्ट्रिक्ट सन्यास के जो रूल्स रेगुलेशन है उनका वर्णन करने लगे। वो कहते हैं विरक्त सन्यासी ते हो रहे न निर्जने। वो विरक्त सन्यासी है, वैरागी है, वो एकांत स्थान में निवास करते हैं। स्वप्ने हो ना करें ते हो राज दर्शने, वो स्वप्न में भी हाँ जो सांसारिक मामलों में जो लिप्त है ऐसे राजा का दर्शन करने के लिए तैयार नहीं होते, वो राजा का दर्शन करना नहीं चाहेंगे। हाँ तो वास्तव में महाप्रभु ने ये बताया है कि राजा का दर्शन आदि, क्योंकि राजा शब्द का मतलब है जो जिसका संबंध इंद्रिय भोगों से है, उसका संग करूंगा तो मेरे अंदर वो भोग की जो भावना है वो आएगी। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि उस व्यक्ति का संग इतना डेंजर नहीं है जो स्त्री के साथ रह रहा है, लेकिन जो स्त्री से आसक्त है उस व्यक्ति का संग बहुत डेंजर है। शास्त्र कहते हैं बहुत, जो स्त्री का संग का डेंजर नहीं बोला गया, जो पुरुष स्त्री के संग से बहुत मैड है, आसक्त है, उसका संग एक भक्त के लिए बहुत खतरनाक है। संदर्शनाम विषय नाम अत योषिताम च हा हंत हंत। वो कहते हैं कि जो साधु जानबूझकर ऐसे विषयी लोगों का संग करता है वो वास्तव में विष का पान कर रहा है, जानबूझ के विष पी रहा है और उसका आध्यात्मिक जीवन की मृत्यु निश्चित है। तो महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट है, महाप्रभु सन्यासी अपने गृहस्थ जीवन में भी थे नवदीप में, तो महाप्रभु गृहस्थ आश्रम में भी थे, तो इस प्रकार से चलते थे कि स्त्री की ओर आंख उठा के नहीं देखते थे। कोई स्त्री आप गृहस्थ आश्रम में होते हुए ऐसे नहीं कि कोई विरक्त या ब्रह्मचारी के लिए ये रूल्स है, नहीं, हर एक जीव जो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहता है उसके लिए बहुत परम आवश्यक है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब अपने गृहस्थ जीवन में भी थे, लक्ष्मी प्रिया या विष्णु प्रिया उनकी भार्या थी, वो नवदीप में चलते भी थे तो ये आदर्श स्थापित कर रहे थे, अपनी आंख ऊपर उठा के नहीं चलते थे, कोई स्त्री सामने आती भी तो है। और इवन जब सन्यासी भी बने तो उसके बाद कभी किसी स्त्री से एकांत में बात नहीं करते थे। हाँ, जैसे प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, प्रभुपाद बताते थे कि मेरे जो गुरु हैं उनके जो उनके एक शिष्य थे उनके जो पत्नी है वो बात करना चाह रही थी, कभी भक्ति सिद्धांत महाराज को मैंने आपसे प्राइवेटली बात करना चाहती हूँ, उन्होंने कहा नहीं पति होने चाहिए साथ, नो प्राइवेसी, नो अलोन, कौन होने चाहिए, पति होना चाहिए। इस प्रकार से हाँ ये बहुत आवश्यक है। तो क्यों, क्योंकि ये हमेशा खतरा बना रहता है। कहते हैं कि जो स्त्री है वो फायर है और जो पुरुष है वो ढेला है, किसका, मक्खन का बड़ा सा ढेला है, तो पिघलना निश्चित है नेचुरली। तो ये जो इसको कहते हैं असत संग, राजा का जो संग आदि है। तथापि प्रकारे तो मां कराए ताम दर्शन, संप्रति करे लाते हो दक्षिण अगमान। इतने पर भी मैंने आपकी भेंट कराने का प्रयास करता, किंतु वे अभी अभी कहां चले गए हैं, दक्षिण भारत गए हैं। तो महाप्रभु जब दक्षिण भारत निकले ना तो चले गए, तो उसके बाद सर्वम भट्टाचार्य को उन्होंने बोला था, राजा कहे जगन्नाथ छाड़ी केने गेला, भट्ट कहे महान तेरा यही एक लीला। तो राजा ने पूछा बताओ ये जो महाप्रभु क्यों छोड़ के गए जगन्नाथपुरी। तो उन्होंने कहा ये तो महापुरुषों की एक विशेष लीला है। हाँ, तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के बारे में राजा प्रताप रुद्र और जानना चाहता है और सार्वम भट्टाचार्य उनको वर्णन करते जा रहे हैं महाप्रभु के बारे में। फिर आगे हम नेक्स्ट टाइम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वास्तव में तीर्थ यात्रा भ्रमण करने के लिए गए, वो अपनी शुद्धि के लिए नहीं। अभी हम तीर्थ यात्राओं का भ्रमण करते वो अपनी शुद्धि के लिए जाते हैं, लेकिन जो महापुरुष होते हैं आचार्य गण होते हैं वो भ्रमण करते हैं उस तीर्थ आदि को पवित्र करने के लिए, क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण प्रेम है, कृष्ण निवास करते हैं, जिसके द्वारा इनके अंदर इतना सामर्थ्य है कि तीर्थों को भी पवित्र करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो महाप्रभु का तो बाहरी रूप बाहरी कारण एक अलग था, दक्षिण भारत की यात्रा में जाने का। क्या कि अरे मेरे जो बड़े भाई है विश्वरूप, उन्होंने संन्यास ग्रहण किया है और हम मिले नहीं जब से उन्होंने संन्यास ग्रहण किया है, कितने साल हो गए, मैं उनको ढूंढना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं। और क्योंकि अभी ये खुद भी सन्यासी हो गए हैं तो ये उनका बहाना था, उनको पता था कि उनके भाई अप्रकट हो गए हैं पंडरपुर में, लेकिन उनको क्या करना था, पूरे दक्षिण भारत का उद्धार करना था, उनका अवतार जो हुआ था। तो इसके भैया अंतरंग कारण था, जाके उद्धार करना सबका, भारी था कि मेरे भाई को मिलना है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ये जो विशेष कार्यकलाप है और उनके जो भक्तों के भक्तों का जो आदान प्रदान है वो बहुत मूल्यवान है, ये निधि है हमारे आध्यात्मिक जीवन में। तो इसलिए प्रयास होना चाहिए कि हम सुने, चर्चा करें और एक दूसरे से शेयर करें। हाँ, इस प्रकार से हम आगे भी श्रवण करेंगे चैतन्य चरितामृत के श्रील प्रभुपाद के गौर प्रेमानंदे।